درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین زکی موسوی، رضی موسوی، امتیاز علی شیخ، رضیہ بیگم، انور علی، سرفراز بیگم اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما بقیۃ اللہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یومنا ھذا الی لقاء اللہ، اما بعد، فقد قال اللہ: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان اللہ کا بڑا عظیم مہینہ ہے۔ وھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور۔ واجب نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس دعا کا ایک حصہ ہے کہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے جو ہے مکرم بنایا، اسے شرف عطا کیا، تمام مہینوں پر اسے فضیلت عطا کی ہے اللہ نے۔ اس عظیم مہینے میں اللہ نے ہمیں عظیم عبادتوں سے نوازا ہے، ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی، ہمیں توفیق دی تلاوت قرآن کی، ہمیں توفیق دی مناجات کی، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لائق بن گئے۔ یہ شرف اس نے ہمیں عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں پروردگار نے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے انجام دی ہیں۔ سب کا مقصد تقویٰ کا حاصل کر لینا ہے۔ عزیزو، تقویٰ کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ مولا صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء۔ جو لوگ زیور تقویٰ سے آراستہ ہوتے ہیں، جو لوگ دولت تقویٰ سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے نفوس بلا و آزمائش میں ویسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام میں، راحت کا زمانہ ہو یا تکلیف کا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ بدلتے ہوئے حالات انہیں تبدیل نہیں کر پاتے۔ جیسے راحت و آرام میں رہتے ہیں، اسی طرح سے تکلیف کے ایام میں، تکلیف و آرام کے ایام اور راحت و آرام کے ایام ان کی نگاہ میں فرق نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اکثر افراد بدلتے ہوئے حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خوشحالی و آرام کے زمانے میں عبادت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور تکلیف و تندرستی کے ایام میں جدا گانا ہوتا ہے۔ دولت و ثروت کے ایام میں خدا کا زبانی ہی صحیح شکر ادا کرتے ہیں، اور غربت و ناداری کے دور میں شکوہ و ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ سورہ فجر کی آیت 15 اور 16 میں ارشاد ہوتا ہے: فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن۔ اللہ جب انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، उसके इम्तिहान लेने के दो तरीके हैं। जब वो इंसान को नेमतों में गर्क कर देता है, एक इम्तिहान नेमतों में गर्क कर देना है, फयकुल रब्बी अकरमन, इंसान खुश हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत अता की, इज्जत बख्शी अल्लाह ने। वम्मा इजा मब्तलाहु फकदर अलैहि रिज़्क़ा, लेकिन जब दूसरी किस्म का अल्लाह इम्तिहान शुरू करता है, उसकी रोजी को तंग बना देता है, रोजी छीन लेता है, फयकुल रब्बी अहानन, तो ये इंसान बिलबिला उठता है और कहता है परवरदगार ने तो मुझे जलील कर दिया। अब ये वो मंजिल होती है जहां शुक्र के बजाय इंसान गिला और शिकवा करता है परवरदगार का। लेकिन साहिबान तकवा ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा खुद को अल्लाह की बारगाह में हाजिर महसूस करते हैं, मुश्किल के आलम में हों या सहूलतों के दौर में हों, हमेशा वो उसकी तरफ जो है मुतवज्जह रहते हैं, चाहे सेहतमंद हों या बिस्तर बीमारी पर हों, अमन व सुलह के माहौल में हों या मिसाइलों की बारिश के हालात में, आजाद हों या जेल की सलाखों के पीछे हों, दौलत व सर्वत से मालामाल हों या गुर्बत व तंगदस्ती के शिकार, तख्त हुकूमत पर बैठे हों या आम रियाया की तरह जिंदगी बसर कर रहे हों, शबाब व जवानी के अय्याम हों या ज़ईफ़ी और बुढ़ापे का ज़माना, उनमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती है। अगरचे अक्सर लोग ऐसे नहीं होते, बीमारी और मुश्किलात में खुदा को याद करते हैं, लेकिन सेहत और राहत के मौके पर खुदा को भूल जाते हैं। सूरह नहल आयत 53 और 54, सूरह यूनुस आयत 12, सूरह रोम आयत 33, सूरह ज़ुमर आयत 49, सूरह इसरा आयत 67, 68, 69 और सूरह अनकबूत आयत 65 में कुरान मजीद मुशरिकीन के सिलसिले में इस तरह हकीकत को बयान कर रहा है। सूरह अनकबूत आयत 65 का एक नमूना मुलाहिजा हो, इरशाद होता है फैजा रकिबु फिल फुल्क दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नजाहुम इलल बर इज़ाहुम युशरिकून। जब कोई साहब दरियाई सफर इख्तियार करते हैं, शिप पे सवार होते हैं, जहाज पे सवार होते हैं, सवार होते वक्त उनकी निगाह जहाज के इस्तेहकाम पर, कितना मजबूत जहाज है, फर्ज कीजिए बहुत ही मजबूत वो जहाज जिसे बड़े से बड़े तूफानों को मद्देनजर रख करके बेहतरीन इंजीनियरों ने डिजाइन किया है, जब उस जहाज पर बैठने लगते हैं, अगर कोई उनसे कहता है सदका निकाल दो, बिस्मिल्लाह कहो, फला दुआ पढ़ लो, अल्लाह को याद करो ताकि हवादिस से महफूज रहो, बड़े गुरूर व तमकनत से कहते हैं, अरे तुम जानते नहीं ये कौन सा जहाज है ये बड़े से बड़े तूफान को झेल सकता है। उन्हें उस वक्त जहाज पर इतना भरोसा होता है कि खुदा को फरामोश कर देते हैं। लेकिन जब समंदर में तूफान उठता है और वो तूफान आ गया जिसकी मिसाल माजी में न थी, डिजाइन करने वाले इंजीनियरों ने तसव्वुर भी न किया था कि इतना सख्त तूफान आ सकता है, जब जहाज के परखचे उड़ने लगे, जब जहाज डूबने लगा, बचाव का उन्हें कोई सहारा दिखाई न दिया, कुरान कहता है दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अब उन्होंने पूरे अखलास के साथ अल्लाह को पुकारा। जब मुश्किल में फंसे, मुसीबत में फंसे, जब सारे दुनियावी सहारे साथ छोड़ गए, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, इस वक्त उन्हें खुदा याद आ गया, पूरे इखलास से उन्होंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह भी बहुत करीम है, वो ताना नहीं देता कि अच्छे हालात में तुम हमें भूल गए, बुरे हालात में हमें पुकार रहे हो, जब भी उसे खुलूस से दिल से पुकारे वो लब्बैक कहता है। जब इन्होंने खुलूस से दिल से उसे आवाज दी, मदद कर दी, बचा लिया तूफान से। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, जब उन्हें सही और सालिम साहिल तक पहुंचा दिया, यानी मुश्किल दौर गुजर गया, फिर अच्छे हालात आ गए, फिर खुदा को भूल गए। फइज़ाहुम युशरिकून, दोबारा इन्होंने वही शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लिया। ये जो मैंने चंद आयतों के हवाले दिए थे, इन आयतों में ये बताया गया है कि मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में मुशरिकीन भी खुदा से लौ लगाते हैं, क्योंकि तौहीद उनकी फितरत में मौजूद है। हालात फितरत की आवाज को दबा देते हैं या इन्हें बहरा बना देते हैं और फितरत की आवाज को नहीं सुन पाते, वरना तौहीद एक फितरी चीज है, हर इंसान की फितरत में तौहीद मौजूद है। चुनांचे सूरह रूम आयत 30 में इरशाद होता है, फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा फितरत अल्लाह लती फतर नासा अलैहा, मुतवज्जे हो जाओ दीन यकता परस्ती दीन हनीफ की तरफ, वो दीन तौहीद, वो दीन यकता परस्ती जो इंसान की फितरत में शामिल है, जिस फितरत पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है उसी फितरत के मुताबिक ये दीन तौहीद है। लेकिन समाज में राइज खुराफाती रस्म और रवाज, गलत तरबियत, बुरी तालीम, गफलत के वो पर्दे हैं जो नूर फितरत के सामने हायल हो जाते हैं, नूर फितरत को सामने आने की राह में रुकावट बन जाते हैं और इंसान तौहीद से गाफिल हो जाता है। रसूल खुदा ने भी इस हकीकत को इन लफ्जों में बयान किया है। हुजूर फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरह हत्ता लियकूना अबवाह हुमा लदाने युहव्विदानहु वयुनस्सराने, हर बच्चा जो पैदा होता है वो दीन फितरत लेकर के आता है, दीन तौहीद को लेकर के आता है। हर बच्चे की पैदाइश दीन तौहीद के हमराह होती है, लेकिन ये उसके माँ बाप हैं जो उसे अपनी गलत तालीम और तरबियत के जरिए से यहूदी या ईसाई बना देते हैं। अगर वालिदैन आड़े ना आते, अगर उनकी गलत तालीम और तरबियत आड़े ना आती, तो ये बच्चा दीन तौहीद पर बाकी रहता। बहरहाल जब इंसान मुश्किलात के तूफानों में फंस जाता है और नजात के तमाम जाहिरी असबाब से नाउमीद हो जाता है, उस वक्त सारे पर्दे हट जाते हैं, फिर इंसान अपनी फितरत की आवाज पर बे इख्तियार इस कायनात के खालिक की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और हर किस्म की मुशरिकाना फिक्र हादसात की भट्टी में जलकर राख हो जाती है और तमाम गैर तौहीदी अफराद गर्मी की तेज धूप में पिघलने वाली बर्फ की तरह नाबूद हो जाते हैं और खालिस तौहीद उभर कर सामने आ जाती है। मुखलिसीना लहुद्दीन का मिस्ताक आश्कार हो जाता है। लेकिन मुश्किलों से नजात पाने और तूफानों के भंवर से सही और सालिम निकल आने के बाद वो फिर मुशरिक हो जाते हैं। सिर्फ अरब के मुशरिक ही ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम में से बहुत से लोग भी ऐसे ही हैं। मुसीबत के वक्त खुदा को याद करते हैं और अच्छे हालात में उसे फरामोश कर देते हैं। जून 1979 का वाकया है। अमरीकी खलाई स्टेशन स्काईलेट के गिरने और उससे फैलने वाली तबाही की खबर आम थी। खबर यह थी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जगह के ऊपर यह स्काईलैब गिर सकता है। और अगर ये आबादी में गिरा तो बहुत भारी पैमाने पर तबाही लाएगा, हजारों लाखों अफराद मौत की नींद सो जाएंगे। हिंदुस्तान में जब यह खबर आई, मैं जिस शहर में था, जब वहां यह खबर फैली, इस खबर के नतीजे में वो अफराद जिन्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा था, वो मुसल्ले से हटने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही यह खबर मिली कि स्काई लेव ऑस्ट्रेलिया के किसी सहराई इलाके में गिरा है और खतरा टल गया, दोबारा उनका मुसल्ला लपेट करके ताक पर चला गया। लेकिन मुत्तकीन ऐसे नहीं होते। यह हाल उन लोगों का है जो जेवर तकवा से आरास्ता नहीं है। अगर हम बुरे हालात में अल्लाह को याद करते हैं, मुसीबतों में फंसते हैं तो उसे पुकारते हैं, और जब नेमतों में गर्क हो जाते हैं, इक्तदार की कुर्सी हमारे पास होती है, दौलत और सरवत का अंबार लगा रहता है, हम खुदा को अगर भूल जाते हैं तो ये दलील है इस बात की कि हम दौलत तकवा से महरूम हैं। हम अभी तक मुत्तकी नहीं बन सके हैं। अभी तक हमारे यहां रूह इबादत, रूह रोजा सामने नहीं आई है। अगर इंसान मुत्तकी हो जाता है तो हर हाल में अपने रब की तरफ मुतवज्जेह रहता है, हर हाल में उसका शुक्रगुजार रहता है, अच्छे हालात में भी और बुरे हालात में भी। मुत्तकीन कभी भी परवरदिगार से गिला और शिकवा नहीं करते, वो हमेशा तस्लीम रजा के दर्जे पर फायज रहते हैं। तस्लीम और रजा इंसान को हर हाल में खुश व खुर्रम रखती है। यह खासियत है तस्लीम और रजा की, क्योंकि उसकी निगाह में गुर्बत व दौलत, सेहत व बीमारी, इज्जत व जिल्लत, मौत व हयात में कोई फर्क नहीं है। न वो दौलत मिल जाने पर इतराते हैं, न दौलत छिन जाने का उन्हें अफसोस होता है, न उन्हें ओहदा मनसब मिल जाने की खुशी होती है, न ओहदा मनसब छिन जाने का अफसोस होता है। वो हर हाल में खुश व खुर्रम रहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ खुदा के मर्जी के ताबे समझते हैं। वो खुदा के हर फेल पर राजी रहते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी बीमार हैं, वो उनकी अयादत के लिए जाते हैं। जब इमाम जाबिर की अयादत के लिए उनके घर पहुंचे हैं, इमाम जाबिर से पूछते हैं, जाबिर क्या हाल है? साइड से बात है कि हर एक का हाल, किसी को अपने मादी हाल का ख्याल होता है, किसी को अपने रूहानी और मानवी हाल का ख्याल होता है। हम जैसे लोगों से अगर पूछा जाता है क्या हाल है, तो हमारी निगाह में तो एक ही हाल है, वो है मादी हाल। लेकिन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, जब इमाम ने उनसे पूछा जाबिर क्या हाल है, तो जाबिर अपने जिस्मानी और मादी हाल के बारे में नहीं बताते, बल्कि अपनी रूहानी कैफियत को बताते हैं। कहते हैं, मौला अल्हम्दुलिल्लाह हाल बहुत अच्छा है, मैं इस वक्त ईमान के उस दर्जे पर फायज हूं कि मेरी निगाह में दौलत से ज्यादा गुर्बत अजीज है, सेहत से ज्यादा बीमारी अजीज है, इज्जत से ज्यादा जिल्लत अजीज है, शोहरत से ज्यादा गुमनामी अजीज है, जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है। यह सुनकर इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, लेकिन जाबिर हम अहले बैत ऐसे नहीं हैं, हमें तो वही पसंद है जो अल्लाह को पसंद है। अगर वो हमें इज्जत के हाल में देखना चाहता है, हमें इज्जत पसंद है। अगर वो जिल्लत के हाल में देखना चाहता है, हमें जिल्लत पसंद है। अगर वो हमें दौलत में गर्क देखना चाहता है, हमें दौलत पसंद है। अगर वो हमें गुर्बत और उसरत की जिंदगी बसर करते हुए देखना चाहता है, हमें वो पसंद है। क्योंकि कुरान की आयत ने बताया कि ये सब इम्तिहान है, दौलत भी इम्तिहान है, गुर्बत भी इम्तिहान है, जिल्लत भी इम्तिहान है, इज्जत भी इम्तिहान है। हम अल्लाह के इम्तिहान पर राजी हैं, खुश हैं वो जिस तरीके से इम्तिहान ले सके। इसीलिए दुआओं में इलाही वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरज़ा, खुदा हमें उन चीजों की तौफीक दे दे जिससे तू राजी है, जिससे तू पसंद है, जो चीज तुझे पसंद वो हमें पसंद है। हम तो तेरे बंदे हैं, हमारा काम सिर्फ ड्यूटी बजा लाना है, तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करना है, कोशिश करना है। अब उसके बाद जिस हालात में तू हमें रखे, हमें वही हालात पसंद है। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम से सवाल किया कि हम किसी शख्स के बारे में ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये मोमिन है या नहीं, उसका ईमान कैसे साबित हो सकता है। इमाम ने जवाब दिया, बितस्लीम लिल्लाह वर्रिदा फीमा वरद अलैह मिन सुरूर औ सख्त। ये देखो कि जो खुशी और गम के हालात उसके सामने पेश आए हैं, दौलत मिली है या दौलत छीनी है, सेहत मिली है या बीमारी से दोचार है, ओहदा मनसब मिल गया है या ओहदा मनसब छिन गया है, ओहदा मनसब मिल जाने की सूरत में और छिन जाने की सूरत में, दौलत मिल जाने की सूरत में, छिन जाने की सूरत में, सेहत मिल जाने की सूरत में और बीमारी में मुब्तला हो जाने की सूरत में, दोनों हालतों में अगर ये अल्लाह के आगे तस्लीम है और वो राजी है अल्लाह की मशीयत पर, इससे पता चलेगा कि वो मोमिन है। लेकिन अगर बदलते हुए हालात में तब्दीली आ जाए, कभी अल्लाह का शुक्र है कभी अल्लाह का शिकवा है, इसका मतलब है कि उसके यहां ईमान नहीं पाया जाता। तस्लीम और रजा की अहमियत रसूल खुदा की इस हदीस से अच्छी तरह वाजी हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं, बड़ी अहम हदीस है, इज़ा काना यौम अल क़ियामा, जब क़ियामत का दिन होगा, अम्बतल्लाह तआला लताइफतिन मिन उम्मती अजनहतन, तो अल्लाह हमारी उम्मत के कुछ लोगों को, सबको नहीं, हमारी उम्मत के कुछ लोगों को पर अता कर देगा। जिसे परिंदों के पास पर होते हैं ना, जिसके जरिए से पंख इसे कहते हैं, पर और पंख जिसके जरिए से परिंदे उड़ते हैं, अल्लाह हमारी उम्मत के कुछ लोगों को पर अता कर देगा। फयतीरून मिन कुबूरहिम इलल जन्नत, तो अपने कब्र ही से उड़ करके, परवास करके जन्नत में पहुंच जाएंगे। बीच में न हिसाब है न सिरात है, कुछ भी नहीं है, कब्र से उड़े सीधे जन्नत में पहुंच गए। यसरहून फीहा, जन्नत की सैर करेंगे, यतनअमूना कैफशा, और जिस तरह से चाहेंगे जन्नत की नेमतों से बहरामंद होंगे। फतखुरुल मलाइका, या फरिश्ते ने जन्नत में टहलते हुए देखेंगे, सवाल करेंगे, हल राय तुम्हारा हिसाब, तुम्हारा हिसाब किताब हो चुका। ताज्जुब होगा ना कि अभी तो कोई आया नहीं है, अभी तो वहां हिसाब किताब चल रहा, ये हाँ कैसे आ गए, पूछे क्या तुम्हारा हिसाब हो गया। फयकुलून, वो जवाब देंगे, माराइतुल हिसाब, नहीं हमारा तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, हमने तो देखा भी नहीं हिसाब किताब कहां हो रहा है, हम तो वहां गए भी नहीं। फतकुलून हल जस्तुम सरात, क्या तुमने पूरे सरात ये जो है उबूर कर लिया, गुजर गए पूरे सरात से। फयकुलून माराइना सरातन, हमने तो पूरे सरात देखे ही नहीं। फतकुलून हल राय तुम जहन्नम, फरिश्ते पूछेंगे क्या तुमने जहन्नम देखा है। फयकुलूना मा रायना शय, हमने तो कुछ नहीं देखा, हम तो सीधे कब्र से उठ करके जन्नत में चले आए। फतकुलुल मलाइकतु मिन उम्मते मन अंतुम, आखिर तुम लोग किसकी उम्मत में से हो, किस उम्मत से ताल्लुक रखते हो। फयकुलूना मिन उम्मत मन अंतुम, फयकुलूना मिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जवाब देंगे, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। फतकुलून, मलाइका उनसे कहेंगे, नुनशिदुकुमुल्लाह नुनशिदुकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह की कसम है, حدثونا ما كانت اعمالكم في الدنيا. مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں آخر تم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے تم بغیر حساب کتاب بغیر پورے صراط سے گزرے سیدھے قبر سے اٹھ کر کے جنت میں پہنچ گئے, کیا تم نے عمل کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ خَصْلَتَانِ كَانَتَا فِينَا, ہمارے اندر دو خصلتیں پائی جاتی تھیں, دو صفتیں پائی جاتی تھیں. فَبَلَغَنَا اللَّهُ هَذِهِ الدَّرَجَةِ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ, انہی دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کے توفیل ہمیں یہ رتبہ یہ درجہ اور یہ بلندی عطا کی کہ ہم حساب و کتاب کے بغیر صراط کی مشکلوں کو سہے بغیر قبر سے سیدھے یہاں پہنچ گئے. میدان محشر کی جو سختیاں ہیں, حساب کی جو سختیاں ہیں, جو منزل حساب ہے, کوئی معمولی منزل تو منزل حساب نہیں ہے, حساب کی وہ منزل ہے جہاں لوگوں کے چہرے دھواں دھواں ہوں گے, ایسے عالم میں کھڑے ہو کر کے حساب دیں گے کہ پیر جل رہے ہوں گے, جلتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہوں گے, اتنی زمین جل رہی ہوگی کہ دونوں پیر زمین پہ رکھنا ممکن نہیں, ایک پیر اٹھائیں گے ایک پیر رکھیں گے, جی تو چاہتا ہے کہ دونوں پیر اٹھا لیں لیکن دونوں پیر اٹھائے تو گر جائیں گے, مجبور ہیں ایک پیر زمین پہ رکھنے کے لیے, ایک پیر رکھتے ہیں جلنے لگتا ہے اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں پھر اسے اٹھاتے ہیں, دھوپ اتنی شدید ہوگی کہ کھوپڑی کھول رہی ہوگی. میدان محشر میں حساب کی منزل کتنی سخت ہے, اسے سمجھانے کے لیے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر کو بلایا, دونوں کو آ حضرت نے دو دو درہم دیا اور دو دو درہم دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اسے خرچ کرو. جب دونوں نے اپنے اپنے لحاظ سے خرچ کر دیا, خرچ کرنے کے بعد رسول خدا نے انہیں حساب کے لیے بلایا. حضور نے قیامت کی زمین تیار کی, دو پت بڑے بڑے پتھر منگا کے ان کو اچھی طرح گرم کیا, مکے کی دھوپ سرزمین مکہ کی تپش دوپہر کا وقت, پہلے ابو ذر سے کہا ابو ذر اس جلتے ہوئے پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. ابو ذر کھڑے ہو گئے, بتاؤ تم نے دو درہم کا کیا کیا, پیر جل رہے ہیں, ابو ذر ایک پیر اٹھا رہے ہیں ایک پیر رکھ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے دو درہم ہمیں دیے, ہم نے اس کا گوشت خریدا, روٹی خریدی, انگور خریدا, خرما خریدا, کپڑا خریدا, جو جو چیزیں خریدی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے ابو ذر نے اس پیسے کو کسی حرام جگہ پہ صرف نہیں کیا تھا, لیکن جب تک لسٹ ختم نہیں ہو جاتی تب تک تو بہرحال پتھر پہ کھڑے رہیں گے. جب لسٹ ختم ہو گئی کہاں کہاں خرچہ کیا ہے تو پتھر سے نیچے آ گئے. حضور اکرم نے اس کے بعد جناب سلمان نے فارسی سے فرمایا, سلمان اب تمہاری باری, تم پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حساب دو کہ تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا. جناب سلمان پتھر پہ آتے اور آنے کے بعد کہتے, یا رسول اللہ دو درہم آپ نے ہمیں دیا, ہم نے وہ دو درہم فقیر کو دے دیا, خدا حافظ, فوراً پتھر سے نیچے آ گئے. بہرحال میدان محشر کی کٹھنائیوں میں سے ایک اہم مشکل موقع حساب کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جو بغیر حساب جنت میں چلے آئے, اس مرحلے سے گزر گئے ہم. اب تو قرآن میں ہے بعض افراد کے لیے کہ اللہ ان کو دے گا بغیر حساب, اللہ انہیں اجر دے گا بغیر حساب, سب کے لیے حساب نہیں ہے, کچھ خاص افراد ہیں جن کے لیے حساب نہیں ہے. کہتے ہیں ہم انہی میں سے ہیں, دو خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی تھیں جن کی بنا پر پروردگار نے ہمیں یہ شرف عطا کیا, یہ موقع عطا کیا, یہ عظمت ہمیں عطا کر دی کہ ہم بغیر حساب اور صراط کی مشکلوں کو جھیلے بغیر میدان محشر احوال میدان محشر کے بغیر ہم یہاں پہنچ گئے. فرشتوں نے کہا آخر پھر وہ ہے کیا؟ فیقولون وما ہما, وہ دونوں خصلتیں کیا ہیں جن کی بنا پر تم کو یہ درجہ ملا؟ فیقولون, انہوں نے اس کا جواب یہ دیا, دو خصلت کیا ہے, کنا اذا خلونا نستحیی عن ناصیہ, ہم جب تنہائی میں ہوتے تھے तब भी हम गुनाह नहीं करते थे, हमें शर्म आती थी कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें, हम सरकशी करें अल्लाह की। अगर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आवाम के दरमियान होते हैं, मजमे में होते हैं, तो उन्हें गुनाह करते हुए शर्म आती है, यानी पब्लिक से शर्म आती है, अल्लाह से शर्म नहीं आती है। लेकिन जब वो तन्हाई में होते हैं जहां कोई देखने वाला नहीं है, चुन खलवत मीरवान, जब वो तन्हाई में जाते हैं तो न जाने कैसे कैसे गुल खिलाते उन्हें। बहुत सारे अफराद बुरे काम नहीं करते अवाम के डर से, उन्हें अवाम से शर्म आती है, अवाम से हया आती है। लेकिन ये कहते हम उनमें नहीं थे, हम तो उन लोगों में से थे, न हम जलवत में गुनाह करते थे, न खलवत में गुनाह करते थे, न जब बज़्म में होते थे तब गुनाह करते थे, न तन्हाई में हम बज़्म में गुनाह न करना, सबके सामने गुनाह न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत से लोग गुनाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं जब तन्हा होते थे तब भी गुनाह क्यों, हमें अल्लाह से शर्म आती थी, अल्लाह से हया आती थी। ये खसलत हमारे अंदर ये पाई जाती थी। और दूसरी खसलत हमारे अंदर ये थी कि वनर्ज़ा बिलयसीर मिम्मा कुस्मा लना, अल्लाह ने हमारा जो मुकद्दर बना दिया, जो रिस्क हमारे लिए अल्लाह की तकसीम में, जो रिस्क हमारे हिस्से में आ गई, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, हम उस पर राजी थे, हम उस पर खुश थे। करोड़ मिल गया तब भी खुश थे, जीरो अगर रह गए तब भी खुश थे, उस वक्त भी खुदा के लिए शाकिर थे, और जब कुछ नहीं मिलता था तब भी हम खुदा के आगे शुक्र के सजदे ही बजा लाते थे। जो सुन करके फरिश्तों ने कहा फतकूलुल मलाइका हक्कुन लकुम हाजा, वाकई अगर तुम्हें अल्लाह ने यह शरफ अता किया कि बगैर हिसाब व किताब सरात की मुश्किलों से गुजरे बगैर यहां तक पहुंच गए तो तुम्हारा हक था, क्योंकि ये दो सिफात ही ऐसे हैं, तन्हाई में अल्लाह से हया करके गुनाह न करना और अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना। अच्छे हालात में खुदा रखे तब भी, बुरे हालात में खुदा रखे तब भी। एक सफर के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक काफिले से हो गई। सरकार खत्मी मर्तबत ने सलाम दुआ के बाद उनसे पूछा तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने जवाब दिया नहनुल मोमिनून या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग मोमिनीन हैं। हुजूर ने पूछा काला फमा हकीकत ईमाने को, क्योंकि ये तो दावा है ना, दावा तो काफी नहीं होता, हर दावे की हकानियत को साबित करने के लिए सबूत और दलील चाहिए। हुजूर ने फरमाया मा हकीकत ईमाने को, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? उन्होंने जवाब दिया कालू अर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह व तफ़वीज़ इलल्लाह व तस्लीमु लिअम्रिल्लाह, हमारा ईमान यह है कि हम अल्लाह के हर फैसले के आगे सरे तस्लीम हम किए हुए हैं, जो उसका हुक्म, जो उसकी मर्जी, जो उसकी मंशा, व तफ़वीज़ इलल्लाह, और हमने अपने को पूरे तौर से अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ऐसा नहीं कि माह रमजान में चंद घंटों के लिए अपने को अल्लाह के हवाले कर दिया, वो भी कुछ खास हालात के लिए, उसके बाद फिर आजाद। नमाज के वक्त अपने को अल्लाह के हवाले कर दिया, अगर कर दिया, उसके बाद आजाद। हज करने गए, जिस वक्त खाने खुदा का तवाफ कर रहे, उस वक्त बजाहिर अपने को अल्लाह के हवाले कर दिया, उसके बाद फिर आजाद। नहीं, वह तफवीज़ इलल्लाह, हमने अपनी जिंदगी का हर सेकंड, हर लम्हा, हर सानिया अल्लाह के हवाले कर दिया है। हवाले का मतलब अब हमारी अपनी कोई मंशा, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रह गई, जो परवरदिगार चाहे वो हम करेंगे। वह तस्लीम उल अम्रिल्लाह, अल्लाह के हर हुक्म के सामने हमारा सर तस्लीम झुका हुआ है। فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علماء حكماء كادوا ان يكونوا انبياء كادوا ان يكونوا من الحكمه انبياء, अरे ये लोग तो, इनका तो ताल्लुक उलमा से है, इनका ताल्लुक तो हुकमा से, इतनी अच्छे सिफात के हामिल हैं, और इसी हिकमत की बिना पर ये तो नबी भी बनाए जाने के काबिल है। ये और बात है कि कोई नबी नहीं आएगा, جو ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. کیا صلاحیت تھی؟ تسلیم و رضا, اللہ کے ہر حکم پر راضی رہ جانا. تسلیم و رضا کا اوج اہل بیت کے یہاں ملے گا. معراج ہے تسلیم و رضا, کیونکہ ہر چیز کے درجات مختلف ہوتے ہیں. ایمان کے درجات ہیں, تقوی کے درجات ہیں, تسلیم و رضا کے بھی درجات ہیں. تسلیم و رضا کا وہ درجہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ہاں پایا جاتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا, ناممکن ہے کہ وہ درجہ کہیں ملے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت پر طرح طرح کی مصیبتیں پڑتی تھیں, اب کبھی انہوں نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا. حتیٰ وہ کسی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتے تھے, سجدے شکر ادا کرتے تھے اس کے اوپر. مصیبت پر صبر نہیں کرتے تھے, شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے, کیونکہ وہ اللہ ان کو پلوں تک جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کربلا میں سب سے مشکل مرحلہ امام حسین کے اس وقت تھا جب 6 مہینے کے شیرخوار کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر تھا. کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی پیچھے ہٹتے تھے, خیمے کی طرف کبھی جاتے تھے, کبھی پیچھے ہٹتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضان بقضائه و تسلیما لامر. اس وقت حسین کے زبان پہ یہی ہے, مشکل ترین مرحلہ ہے یہ حسین کے لیے, لیکن راضی ہیں, شکوہ نہیں ہے پروردگار سے. اس وقت ایک اہم جملہ امام حسین نے فرمایا ہے, لحون علی انہ بامر اللہ, یہ منزل بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے انجام پا رہا ہے. جو اس کی مشیت ہے, جو اس کے دین کے لیے ضروری ہے, وہ حسین کرنے کو تیار ہیں اور خوش خوش اس کو انجام دینے کو تیار ہیں. وہ آخری لمحہ جس وقت امام حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پر آئے ہیں, گلے پر شمر کا خنجر ہے, زمین پر حسین کا رخسار ہے, اور زبان پہ یہ جملے ہیں, یا غیاث المستغیثین, لا معبود سواک, رضان بقضائک و تسلیما لامرک. پالنے والے تیرا ہر فیصلہ حسین قبول کرنے کو تیار ہے, راضی ہے حسین تیرے ہر فیصلے پر. جس حال میں تو رکھے حسین راضی ہے, تیرا ہر حکم ماننے کے لیے حسین تیار ہے. الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیہ, خدایا تمام مصیبتوں کو جانتے ہوئے بھی اگر میں کربلا میں آیا ہوں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. جس چیز کی تلاش ہے حسین کو, جس چیز سے عشق ہے حسین کو, وہ خدا کی خوشنودی ہے, رضا خدا ہے, رضا خدا ہے. الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا, افتخاری انی اعطیت کل شیء, انی اعطیت کل شیء لاجلک وفی سبیل دینک. خدایا میں شرمندہ نہیں ہوں, پشیمان نہیں ہوں, مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر, جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب کچھ میں نے قربان کر دیا تیری خاطر, تیرے دین کی خاطر. اپنی اولاد کو قربان کر دیا, اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا, اپنے اصحاب کو قربان کر دیا, اور آنے والی منزل میں اپنی بہن زینب کی چادر کو بھی قربان کر دوں گا. اپنے سر کی قربانی کے ساتھ ساتھ تیری خوشنودی کے لیے, تیری رضا کے لیے, تیرے دین کے خاطر. بہرحال یہ تو تسلیم ہو رضا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, لیکن متقین بھی تسلیم و رضا کے اس درجے پر فائز ہیں کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء, ان کے نفوس بلا و آزمائش اور مشکل حالات میں مصیبت کے موقع پر ایسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام کے موقع پر. اگر سب کچھ निदाम जिंदगी सही चल रहा, ठीक ठाक चल रहा है, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, गुनाहों से अपने को दूर रखते हैं, शराब नहीं पीते हैं, रक्स व सुरूद की महफिलों में शरीक नहीं होते हैं, ये सब करने के बावजूद हमारी नौकरी पर, हमारी जॉब पर कोई हर्फ नहीं आता, हमारे कारोबार पर हर्फ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते रहेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता हमारी जॉब, हमारी नमाज की वजह से हमारी जॉब पे असर आ रहा है, हमारी दाढ़ी की वजह से हमारा बिजनेस ये जो है मुतासिर हो रहा है, खातून जो हिजाब करती है, हिजाब की बिना के ऊपर फर्ज कीजिए उनका रिश्ता नहीं आता है, अच्छा शौहर नहीं मिल रहा है, या जॉब पर अगर है जॉब से उनको निकालने की धमकी दी जा रही है, उन्होंने नमाज को छोड़ दिया, उन्होंने दाढ़ी को छोड़ दिया, उन्होंने हिजाब को छोड़ दिया, ये अलामत है इस बात की कि हम अभी तक मंदिर तकवा पर फायज नहीं हो सके हैं। खुदा बंद मताल से दुआ है कि खुदा हमें ऐसे तकवे की तौफीक इनायत फरमाए, हम हर हाल में अल्लाह के बंदे रहें और उसके अहकाम व फरामीन की इताअत के लिए कमर बस्ता रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।